عبادتِ جنت خدا کو پکاروں گا یا اللہ کہوں گا, کوئی نماز پڑھوں گا, کوئی قرآن کریم کی تلاوت کروں گا, کوئی دعا پڑھوں گا, اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. لیکن یہ تو بولتا ہے جو خدا نے ہمیں دیا تھا. اب اس کے اندر ہم نے کیا مشکل کی؟ ہم نے مشکل کچھ ایسی کی کہ روزہ بھی رکھیں گے اور کنٹرول دل میں نہیں آئے گا. نماز میں ہم نے یہی کیا, نماز خدا نے دی تھی کہ بھائی تم یہ نماز سیکھ لو, اس سے تمہیں کنٹرول سیکھنے میں آسانی ہو جائے گی, تمہیں اپنے ذہن کے اوپر کنٹرول ہوگا, تمہیں باڈی کے اوپر کنٹرول ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ہم نماز بھی پڑھیں اور کنٹرول پھر بھی نہیں سیکھیں گے. وہ کیسے؟ 5 منٹ نماز پڑھیں گے اور 4.5 منٹ دماغ باہر ہوگا. بھائی یہ تو آپ 10% کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس 10% کی نماز کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ کے دماغ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا, دماغ کو نماز کے اندر تب کنٹرول اچھی ہوگا. اچھا آپ خدا نے مثال کے طور پر کہا کہ بھائی میں کچھ واجب کر رہا ہوں, کچھ چیزیں مستحب کر رہا ہوں, تو میں کیا کروں گا؟ میں نماز پڑھوں گا اور سارے مستحبات نعوذ باللہ چھوڑ دوں گا. کنٹرول کیسے ہے؟ مثلاً ایک چھوٹا سا مستحب ہے, جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں قیام کے لیے, تو کیسے کھڑے ہو؟ ایسے کھڑے ہوں یا ایسے کھڑے ہوں؟ تو اب ہمارا مستحب ہے کہ بھائی آپ کے ہاتھوں کو سائڈ میں نہیں رکھیں بلکہ ہاتھوں کو سامنے رکھیں اور دونوں پاؤں کو برابر میں کھولیں اور اس طرح مؤدب ہو کے کھڑے ہوں. اب اگر میں یوں کر کے کھڑا ہوں تو کیا حرام ہے؟ نہیں حرام نہیں ہے, لیکن اس میں کس پہ زیادہ کنٹرول ہے؟ اسی طریقے سے ہاتھ کو انگلیاں کھولا ہونا چھوٹا سا کام ہے, ہاتھ انگلیاں کھولی رہے, خدا چاہتا ہے یہ بند رہے, آپ مؤدب رہو. چھوٹا سا ایک کنٹرول ہے انگلیوں کے اوپر, کنٹرول خدا چاہتا ہے. واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب نہیں ہے, لیکن کنٹرول بڑھانے کے لیے اچھا ہے. اسی طریقے سے نماز پہ توجہ دینا. تو اب اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور ان تمام چیزوں پہ توجہ نہ دے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن کنٹرول نہیں آئے گا. اور وہ ہم یہ وہ چیزیں جو ہم سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے اندر وہ کنٹرول کریٹ نہیں ہو رہا ہے. اب مائے پار کے رمضان میں کیا ہوگا؟ اب بدقسمتی سے روزے میں یہ ہوگا جو میں بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بھائی میں 30 دن یا 29 دن دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں تو میرا وزن کم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ وزن کم ہونا چاہیے, لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ماہ شعبان کا اینڈ ہے, آپ اپنا ویٹ نوٹ کر لیجیے گا اور پہلی شعبان کو ویٹ کو دوبارہ دیکھیے گا, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ بڑھ جائے گا. یہ بڑھ جائے گا, کیوں بڑھے گا؟ اس کی وجہ بڑھنے کی یہ ہے کہ یہ سحری میں 3 وقت کا کھانا کھائے گا اور افطار میں بھی 3 وقت کا کھانا کھائے گا. تو پہلے عام دنوں میں 3 وقت کا کھانا کھاتا تھا, ابھی 6 وقت کا کھانا کھائے گا. یہ اچھا ایک کام تو یہ کہ اس کی باڈی کا جو چینج آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئے گا. دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کو کنٹرول سیکھنا تھا, وہ کنٹرول سیکھے گا نہیں. جب افطار آئے گا تو یہ ایسا کھانے پہ حملہ کرے گا جیسے اللہ سے بھوکا رکھنے کا انتقام لے رہا ہے کہ تو نے مجھے کیوں بھوکا رکھا. تو یہ کیا کنٹرول سیکھے گا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں سیکھے گا. اچھا دوسرا مسئلہ ایک اور ہے, خدا نے کہا تھا بھوک میں رہو پیاسے رہو کنٹرول سیکھو. تو روزہ صرف خدا نے پیٹ کا رکھا تھا یا روزہ فکر کا بھی رکھا تھا؟
روزے سے تمہیں کنٹرول سیکھ لینا چاہیے, 40 سال میں
साल पर उधर रहते हैं तो कंट्रोल नहीं आया, तो कंट्रोल इस वजह से नहीं आया कि सही तरीके से रखूंगा तो आएगा ना, जब सही तरीके से रखूंगा नहीं तो कैसे आएगा। अब मैं ऐसी नमाज उठ गया तो नमाज को इम्प्रूव करना चाहिए इंशाल्लाह। आज शाम नमाज के ऊपर ही कुरान रखा गया कि इंशाल्लाह उसके अंदर नमाज के बारे में आज करूँगा कि इम्प्रूव कैसे करें अपनी नमाज, और रोजे के बारे में इसलिए अर्ज किया कि एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह कुरान वाले का रमजान शुरू हो जाएगा, और रोजे की जो लॉजिक है उसको आप अपने जहन में जरूर सोचिएगा। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखकर हम वो स्पिरिचुअलिटी अचीव कर सकते हैं जो खुदा तआला ने माने वाले रमजान के अंदर हमारे लिए करार दिया है इंशाअल्लाह ताला। और सबसे बड़ी ताकत जो आपको कंट्रोल में दिखानी है वो कहाँ पर है, तो उसके जुमले में आज करने के जुमले में दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सबसे बड़ी ताकत दिखा देगा इस बात के ऊपर कि आपके मेरे दिल में दूसरे के लिए नफरत नहीं है। सबसे बड़ा कंट्रोल इसमें दिखा दीजिए, मैं किसी से नाराज हूं जब वो मेरे सामने आता तो क्या होता है, अंदर एक चीज बॉयल हो गई होती है। आपने ये कंट्रोल कर लिया ना तो समझ जाए आपकी जिंदगी आसान। कोई आदमी आपके सामने आया ना हो तो वैसे आपका कोई पुराना मामला चल रहा है और आपके दिल में अचानक सामने भी नहीं आया जहन में उसका ख्याल आ गया तो एकदम से हेटर नफरत दिल में आने लगती है कि जितने नेगेटिव फीलिंग है ये मैं दो दिन चार दिन नमाजें पढ़ के जितनी आपकी स्पिरिचुअलिटी बनाऊंगा ना एक मिनट की जेलसी में सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हसद जेलसी ईमान को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो मैं पूरा एक महीना मिसाल के तौर पर महबार के रमजान के रोजे रखूंगा और नाउज बिल्लाह तआला उस नफरत को मैं कम नहीं कर सका, गुस्से को कम नहीं कर सका। बहुत बड़ा मसला हमारी सोसाइटी के अंदर इसको लोगों की एंगर पे टेम्परमेंट, टेम्पर लूज है, और टेम्परमेंट लूज होने के बाद फिर क्या होता है कि मामला खत्म। आपने जितना कुछ कमाया था वो सब लूज हो रहा होता है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और तकवा परहेजगारी की नसीहत और दावत करते हुए कहूंगा कि तकवा का हिस्सा कि अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करें, अपने दिल के ऊपर कंट्रोल करें, सिर्फ पेट के ऊपर और मुंह के ऊपर कंट्रोल करने से मामला हल नहीं होगा। और जितना हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होगा खुदा का कुर्ब नसीब होगा, खुदा का इंशाअल्लाह मानवियत नसीब फरमाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्ना अलैनाकल कौसर فصلي لربك وانحر إنا سعيك هو الأبتر। अगर हमारी जिंदगी में तकवा के अलावा कोई रास्ता अच्छा होता तो हमें खुदा उस रास्ते के ऊपर भेज। अगर हमारे लिए कंट्रोल के अलावा कोई रास्ता अच्छा होता और शायद की पैरवी का रास्ता अच्छा होता तो खुदा हमें क्यों मना करता। अगर हम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे क्या नाउज बिल्ला खुदा के खजाने में कोई कमी आ जाए, नाउज बिल्ला खुदा का कोई नुकसान हो जाए, कोई नुकसान नहीं। हम सारे के सारे इंसान अगर अल्लाह की बंदगी करते हुए जन्नत के सबसे बड़े दर्जे में पहुंच जाए तो अल्लाह की जन्नत में कोई कमी नहीं आएगी। नाउज बिल्ला ताला सदना बिल्ला ताला सारे इंसान गुस्ताखी करें ना फरमानी करें और कोई भी अल्लाह की बंदगी ना करे तो खुदा मुताल की सल्तनत के ऊपर उसकी कुदरत जल्ला शाहू के ऊपर क्या असर पड़ेगा। खुदा ने हमें दे रखा हम नमाज पढ़े तवज्जो से पढ़े ढंग से पढ़े रोजा सही रखें अपने ऊपर कंट्रोल करें किसको फायदा होगा, आपको फायदा होगा, आपकी कम्युनिटी को फायदा होगा, आपकी सोसाइटी को फायदा होगा। अगर लोग दिल में बोक्स नहीं रखेंगे स्पिरिचुअली डेवलप होंगे तो फैमिली को फायदा होगा या नहीं होगा, सबसे ज्यादा फायदा फैमिली को। और जब मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता अपने अंदर बुक्स रखता हूँ हसद रखू ना जुमिल्ला की ना हो और दूसरों के साथ जेलसी हो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो, सबसे ज्यादा नुकसान मुझे होगा, दूसरे नंबर पर नुकसान होगा मेरी फैमिली को, मेरी फैमिली को नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा। हम लोगों ने बार-बार स्टैंडर्ड अपने पैसे को समझा कि अगर खुदा मुझसे नाराज होगा तो मेरा पैसा कम कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है। सूर्य अनाम के अंदर खुदा तआला फरमाता है, मैं बालकों से नाराज होता हूँ, उनके ऊपर दुनिया की सारी नेमतें खोल देता हूँ। उल्टा होता है बादुखा, बादुखा खुदा तआला किसी को सजा देने के लिए उससे पैसा छीन लेता है, और बादुखा किसी को सजा देने के लिए उसके ऊपर सारी दौलत के दरवाजे खोल देता है। किसी के पास नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि खुदा इससे नाराज है, और किसी के पास है तो इसका ये मतलब नहीं कि खुदा इससे खुश है। खुदा ने हजरत अबू ज़र जैसी शख्सियत को करीब रखा है, हजरत सलमान फारसी जैसे को करीब रखा है, और खुदा मंदार ने हजरत सुलेमान जैसे नबी को दुनिया की सारी दौलत दी है। होना या ना होना कोई स्टैंडर्ड नहीं है, फिर क्या स्टैंडर्ड है? ये देखो कि मैन ऑफ कैरेक्टर है या नहीं है। कैरेक्टर में क्या है, क्वालिटीज में क्या है? अगर मैं किसी आदमी को देखूं, एक आदमी मुझे देखे और वो आदमी मसलन मेरे सामने रिस्पेक्ट कर रहा हो, मैं कहूं चलो मेरी रिस्पेक्ट होगी, माशरे के अंदर नहीं, रिस्पेक्ट काफी नहीं है। ये रिस्पेक्ट तो बादशाहों की भी हुई है, ये तो फिरौन की भी हुई है, तो कौन से रिस्पेक्ट चाहिए? अल्लाह की भी इज्जत है, वो इज्जत क्या कहती है? वो इज्जत ये कहती है मेरी रिस्पेक्ट मेरी फेम की वजह से नहीं होनी चाहिए, मेरी वेल्थ की वजह से नहीं होनी चाहिए, मेरी पावर की वजह से नहीं होनी चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि मैं सच्चा इंसान हूं, इसलिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये इज्जत है। मेरी रिस्पेक्ट इसलिए होना चाहिए कि मैं काइंड हूं, मैं अर्जेंट नहीं हूं, इसलिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर लोग इस डर से रिस्पेक्ट करें कि भाई अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मैं चार बातें कहकर उसको दिलीप कर दूंगा, वहां से सबसे बुरा इंसान हुआ है जिसकी रिस्पेक्ट उसके खौफ से हुई। अल्लाह के रसूल ने हमें नहीं सिखाया, अल्लाह के रसूल ने क्या सिखाया? फरमाया अपने दिलों से नजदीक करो इंसान को, दिलों से नजदीक करो। अल्लाह के रसूल एक दफा एक जगह तशरीफ ले गए, लोग उनके वेलकम करने के लिए आगे आए, तो रसूल खुदा ने देखा कि एक जवान एक कमरे के अंदर अकेला बैठा हुआ, उसी कमरे के अंदर पीछे बैठा हुआ। रसूल खुदा इतने हम्बल अपनी जात के अंदर, रहमतुल्लिल आलमीन, सबको उन्होंने सलाम किया, जवाब दिया, उस आदमी को देखा वो अकेला बैठा हुआ, तो उनसे रहा नहीं गया, वो गए उसके पास और उससे कहा कि सब लोग उठे सलाम किए, तुम अकेले क्यों बैठे हैं? उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के बहुत बड़े नबी हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, और मैं जाहिल आदमी हूं, मुझे मैनर्स नहीं आते, तो मैं इसलिए यहां पर बैठा रहा कि मैं डरा कि अगर मैं आपके नजदीक जाऊं और मैंने कोई गलत बात कह दी, गलत हरकत कर दी, तो मैंने आपकी इंसल्ट कर दी, खुदा मुझे अजाब करेगा, इसलिए मैं डर के मारे यहीं बैठ गया। अल्लाह के रसूल ने उसको अपने सीने से लगा दिया, अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर कहा कि क्या तुमने कभी देखा है कि मैंने किसी को अपनी वजह से सजा दी हो, मैंने किसी को पनिश किया हो, उसने मेरी रिस्पेक्ट में कमी की? हमें मैं सजाएं देने नहीं आया हूं, मैं रहमतुल्लिल आलमीन हूं, मैं रहमत देने आया हूं, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा भाई हूं। इस नबी की इज्जत होगी या नहीं होगी? इज्जत ही इज्जत है, आज तक इज्जत है, इस वजह से इज्जत नहीं है कि वो अरब मालिक थे, इस वजह से इज्जत है कि वो रहमतुल्लिल आलमीन। ये वो मैसेज है, और हम लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है इस वक्त सोसाइटी के अंदर, जो हमारी प्रॉब्लम है, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हो, चाहे वो मुसलमान कंट्रीज के बाहर, आपके जैसे या यूरोप अमेरिका वगैरह के अंदर हो, तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि दीन का एक शेल हमारे हाथ में है, लेकिन दीन की स्प्रिंग हमारे हाथ में नहीं, शेल हमारे हाथ में है। नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, अल्लाह जज़ा खैर के लिए काम करते हैं जिन्होंने हमें सिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुश्किल रह गई। यासीन पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाजें अज़ादारी और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिलों में ट्रबल, दिल नजदीक नहीं। खुदा बंदा कुरान शरीफ में बताता है कि لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بين قلوبهم। اے نبی آپ ساری دنیا کی نعمتیں دولتیں کے اوپر قربان کر دیتے، آپ ان کے دلوں کو نزدیک نہیں لا سکتے تھے۔ آپ اپنی سوسائٹی اور کمیونٹی کی گروتھ मुझे देखना देखना हो, यानी मसलन मुझसे कोई पूछे भाई ये सोसाइटी कितनी कैसी है, इसकी ग्रोथ कितनी है, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग हिसाब के तौर पर दुनिया में देखते हैं इनका नंबर कितना है, नंबर वन। नंबर टू देखते हैं इनकी बिल्डिंग्स कैसी है। नंबर थ्री उस कम्युनिटी के पास एसेट्स कितने हैं, उसके बैंक बैलेंस में कितना है, तो हम इससे कम्युनिटी की ग्रोथ देखते हैं। ये पैरामीटर सही नहीं है। मैं नहीं कह रहा बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा मेंबर ज्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा होने चाहिए। मैं तो कराची जा रहा हूँ, आप बंदे ही बंदे। लेकिन क्या देखना चाहिए, ये देखना चाहिए दिल कितने नजदीक, मोहब्बतें कितनी ज्यादा। अगर खींचे खींचे रहने दिल इतने नजदीक नहीं है, तो हमारी मॉडर्न लाइफ का एक फिनोमिना है। मॉडर्न लाइफ का एक फिनोमिना, मॉडर्न लाइफ का फिनोमिना क्या है, हम कह रहे हैं हम लोग के साथ मुसीबत क्या हो गई है, हम जंगल के दरख्तों की तरह उग गए। क्या मतलब, साथ साथ खड़े कम्युनिकेशन नहीं है, इमोशंस नहीं है। जंगल में देखा एक दरख्त क्या है, एक दरख्त क्या है, बिल्कुल साथ साथ लगे हुए दरख्त, लेकिन इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, नो इमोशंस। हम लोग बिल्कुल हाईवे की गाड़ियों की तरह है, दोनों गाड़ियां साथ साथ चल रही है, लेकिन क्या एक दूसरे के साथ है, नहीं। हमारी कम्युनिटी जैसे बन रही है, और इसका नुकसान क्या हो रहा है, इसका नुकसान हमारी औलाद को, इसका नुकसान हमारी औलाद को, इसका नुकसान हमारी सोसाइटी को हो रहा है, हमारी स्ट्रेंथ को हो रहा है। क्यों आज मुसलमानों की यह हैसियत है कि दुनिया के अंदर जिसको किसी को पीसना हो मुसलमानों को पीस देता है। अच्छा दौर आ रहा है, काफी शुक्र है, अहले बैत के चाहने वालों की ताकत दुनिया के सामने आ रही है। आज जो दुनिया के अंदर हो रहा है, ये बोल बनाया रहा है हम अहले बैत के चाहने वालों की। इसके बावजूद जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो इम्प्रूवमेंट अंदर के अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा बाहर के काम ना किए जाए, बिल्कुल जरूर किए जाए, तो करना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अंदर को। और ये जो दुनिया है, ये दुनिया जो बाहर होती है, ये हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन होती है। तो अगर मुझसे कोई ये कहे हमारी सोसाइटी में डिवोर्स बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत बड़ा इकोनॉमी है हमारे पास, पहले 30 साल में अगर दो तीन तलाक होती थी, अभी हर महीने दो तीन तलाक हो जाएंगे। कोई अगर हमसे कहे भाई डिवोर्स ज्यादा हो रही है, तो मैं समझूंगा जो डिवोर्स बाहर हो रही है ना, ये अंदर हमने खुदा को तलाक नहीं दी, इसकी वजह से बाहर तलाक हो रही है। अंदर हमने अपनी मोहब्बतों को तलाक दी हुई है, इस वजह से बाहर तलाक हो रही है। अच्छा अमीर मोमिन ने किसको तलाक दी थी, अमीर मोमिन ने दुनिया को तलाक दी थी। तब तो के सलासा मैं तुझे तीन बार तलाक देता हूँ, जिसके बाद वापसी का कोई इम्कान नहीं है। अमीर मोमिन ने दुनिया को तलाक दी थी। अब हम लोग साथ क्या हो रहा है, अगर ये थोड़ा गाड़ी उर्दू समझ में आ जाए मुझे भी, जिससे अमीर मोमिन ने जिसको तलाक दी, हम उसे तीन शादियां करना चाह रहे हैं। जिसको अमीर मोमिन ने तीन दफा तलाक दी, हम उसे तीन शादियां करना चाह रहे हैं। दुनिया बचेगी या उजड़ेगी, उजड़ जाएगी, उजड़ जाएगी। इस तरह से बसाने के लिए क्या करना होगा, अमीर मोमिन के रास्ते में चलना पड़ेगा। दुनिया होना बुरा नहीं है, दुनिया पे मरना बहुत बुरा है। दुनिया आपके हाथ में कोई बुरी चीज नहीं है, दुनिया के लिए जिंदगी गुजारने के लिए बहुत बुरा है। आप लिए एक बात, मोमिन बनो, तकवा हासिल करो। मोमिन कौन होता है, तुम्हें बहुत ज्यादा दोहराता हूं। पाकिस्तान में राइटर था बलिया, और उसने बहुत अच्छी कुछ चीजें लिखी हैं, तो उसने अपनी एक किताब में जगह पे लिखा, बार बार घड़ी इसलिए देख रहा हूँ, सामने घड़ी नजर नहीं आ रही, तो उसने अपनी किताब में बहुत अच्छा जुमला लिखा। कहने लगा मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि भाई ये मुसलमान कौन होता है और मोमिन कौन होता है। उसके जहन में सवाल आया कि भाई मुसलमान कौन है, मोमिन कौन है। अच्छा हम लोगों ने तो तारीफ बनाई हुई है ना कि भाई मोमिन, हम मोमिन है बाकी सब वाले। उस जगह नहीं, थोड़ी डेप्थ होनी चाहिए भाई। मोमिन आखिर खुदा इतना कहता है मोमिनीन, मोमिनीन कौन लोग हैं मोमिनीन, खुदा मुत्तकीन कहता है, सालिहीन कहता है, मुहसिनीन कहता है, कौन लोग हैं। तो वो किसी से पूछना था, उसने कहा कि भाई मुसलमान जो होता है ना, वो होता है जो कलिमा पढ़े, मोमिन वो होता है जो नमाज पढ़े। उसने कहा मैंने बहुत सारे नमाज पढ़ने वाले देखे, अच्छे बंदे नहीं है। तो फिर किसी ने कहा मुसलमान वो होता है जो कलिमा पढ़े, मोमिन वो होता है जो कुरान पढ़ता। कहा मैंने बड़े बड़े हाफिजों को दो नंबर दे दिए हैं, ये बात तुम्हारी सही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा वो मुसलमान वो होता जो कलमा पढ़े, मोमिन वो होता वो होता, कहा नहीं ये सब बातें सही नहीं। तो किसी इलाके में क्या वहाँ पे होशियार आदमी था थोड़ा जानने वाला, मैं उसको नहीं कह रहा पढ़ा लिखा, आजकल के बहुत सारे पढ़े लिखे बहुत बड़े जाहिल हैं, आजकल के बहुत सारे यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर, मुझे पेपर डिग्री होल्डर खुद भी है यूनिवर्सिटी की, बुरा नहीं है यूनिवर्सिटी में पढ़ना, ये अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी सिर्फ स्किल्स दे रही है, मैनर्स नहीं दे रही जिंदगी, प्रॉब्लम हमारे साथ है। तो वो आया एक आदमी के पास, वो मशहूर था कि बहुत होशियार आदमी है, तो उसको पंजाबी जबान में अगर कोई बहुत होशियार होता है तो उसको कहते हैं सियाना, उर्दू में भी इसको इस्तेमाल करने के लिए पंजाबी का लफ्ज़ सियाना, तो कहते हैं बहुत सियाना आदमी है, आजकल नेगेटिव भी हो गया इसको कहते हैं सियाना है, जो लोग समझते हैं बहुत मक्कार है, पर वो बहुत होशियार आदमी था। तो उसके पास गया और उससे कहा कि भाई सियाने से पूछो, हो गया सियाने के बाद उससे पूछा भाई क्या, उसने कहा क्या सवाल है तुम्हारा, कहा मेरा सवाल ये है कि मुसलमान कौन है और मोमिन कौन है, तो उसने कहा तुम्हें कौन सा वाला पता है, तो उसने कहा मुसलमान का मुझे पता है, जो कलमा पढ़ता है वो मुसलमान होता है, कहता है मोमिन कौन होता है, कहने का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब जरा उर्दू की ट्रिक है, उसने कहा जो अल्लाह को मानता है वो मुसलमान होता है, जो अल्लाह की मानता है वो मोमिन होता है, जो अल्लाह को मानता है वो मुसलमान होता है, जो अल्लाह की बात माने वो मोमिन होता है। अब एक होता है जो अली का शिया होता है वो कौन होता है, जो अली को माने, और एक होता है अली का मोमिन वो होता है जो अली की मानता है। अब मैं पूछूंगा तुमको को बनना है या की बनना है, को तो पैदा होते ही बन जाओगे, की बनो, की बनो, मोमिन बनो मोमिन। तो मोमिन वो होता है जो अल्लाह की मानता है। अब जिस बच्चे को उर्दू ना आती हो कहते मौलाना ये चीज बनाने पे क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, उसे बता देना अच्छा ना? ये सब असल जिंदगी, असल जिंदगी क्या है, देखो आखिरी बात हमें खुशी चाहिए ये असल जिंदगी, हमें सुकून चाहिए ये असल जिंदगी। खुशी सुकून कैसे आता है, खुशी सुकून अंदर को साफ रखने से, अंदर पूरा बैगेज पड़ा हो गंदगी का कौन सी खुशी आएगी, खुशी नहीं आएगी, खुशी आएगी अंदर को साफ करने से। तो इंशाअल्लाह परवरदिगार दुनिया भी नसीब फरमाए आखिरत भी नसीब फरमाए, खुदा से दुआ करते हैं पाक परवरदिगार तूने हमें दीन की नेमत नसीब फरमाई, दीन पर अमल करने की सआदत नसीब फरमाए, खुदाया तूने हमें एक साथ मिलकर रहने की सआदत नसीब फरमाई, हमारे दिलों को भी इंतहाई करीम फरमा, ऐ पाक परवरदिगार तूने हमें इमामत की नेमत नसीब फरमाई, तेरा एहसान है उन्हें दीन की नेमत नसीब फरमाई, हमें इमाम के बेहतरीन चाहने वालों में करार फरमा, या खुदा परचम कुरान अहले बैत दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की सआदत नसीब फरमा, ऐ पाक परवरदिगार जुमे का दिन है उन्हें इस दिन को मग़फ़रत और दुआओं का दिन करार दिया, खुदा हम में से जो बीमार हैं चाहे जिस्मानी बीमार चाहे रूहानी बीमार, तमाम जिस्मानी और बीमारी रूहानी बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, जो दुनिया से गुजर गए हैं खुदाया हमारे मरहूमीन के तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा की मग़फ़रत फरमा, ऐ खुदाया दोबारा दिन तेरे इमाम का दिन है, उनकी बेहतरीन तैयारी अब की तैयारी, उनकी बेहतरीन तैयारी उनके लिए अपने आप को पाकीज़ा करना है, खुदाया जुम्मे का दिन है तुझे वास्ता नबी और औलाद नबी का, इस दिन का इस मुकद्दस दिन का वास्ता सैयद और सरदार मौला और आका इमाम आखिरुल ज़मां के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें हमारी नस्लों को उनके जानसारों में करार फरमा, खुदाया इमाम का लश्कर दुनिया में जहाँ कहीं भी है उस तमाम लश्कर की तादाद में इजाफा फरमा, इमाम के दुश्मन दुनिया में जहाँ कहीं भी है काबिल इस्लाम ना हो तो वासिले जहन्नम फरमा, और एक दुआ खुदाया तूने जिंदगी हमें नसीब फरमाई, तूने हमें इज्जत दी, तूने हमें जिंदगी की नेमतों से नवाजा, हमें दुनिया की बेहतरीन मौत नसीब फरमा, शहादत की मौत नसीब फरमा, इमाम की नुसरत की मौत नसीब फरमा, रब्बाना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि अत्तहिरीन कमा युरीदुल्लाह लियुज़हिर